व्यक्तित्व का विकास गुणों के ऊपर टिकता है, उसका व्यक्तित्व वजनदार बन सकता है। व्यक्तित्व ही वो संपदा है जिसके आधार पर मनुष्य अध्यात्म जीवन और सांसारिक जीवन में सफल होता है। सफलता के लिए धन काफ़ी नहीं है, सफलता के लिए साधन काफ़ी नहीं है, सफलता के लिए दूसरों का सहयोग काफ़ी नहीं है। इन चीज़ों की ज़रूरत तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा आदमी के पास हथियार है, सबसे बड़ा जो वैभव है आदमी का व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व को कैसे विकसित किया जाए, उसे सद्गुणों से सत्प्रवृत्तियों से संपन्न कैसे किया जाए, एक प्रश्न यही है सबसे बड़ा। इसको अगर कोई आदमी समाधान कर लेता है तो समझ लीजिए उसने अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने की आधी मंजिल पार कर ली। व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास कैसे हो आइए ज़रा विचार करें। इसके लिए कोई न कोई काम करने के लिए जगह होनी चाहिए ना, प्रयोगशाला कहीं होनी चाहिए ना, तैरने के लिए तालाब होना चाहिए ना, कसरत करने के लिए व्यायामशाला होनी चाहिए ना, पढ़ने के लिए कोई विद्यालय होना चाहिए ना, काम को सीखने के लिए और काम को करने के लिए कोई प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना कोई बात सीखी नहीं जा सकती, कोई चीज़ अभ्यास में उतारी नहीं जा सकती। कार्यक्षेत्र के बिना, इसके लिए कार्यक्षेत्र कहाँ हो व्यक्तित्व के विकास करने का, ये स्वयं में चिंतन आवश्यक तो है, उपासना आवश्यक तो है, भावना आवश्यक तो है, पर एक क्रियापक्ष भी तो चाहिए। कर्म करने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए, अभ्यास करने के लिए कोई स्थान भी तो चाहिए, दौड़ने के लिए कोई जंगल भी तो चाहिए, कुछ न कुछ काम करने को जगह चाहिए। जगह करने के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जिस जगह की आवश्यकता है उसका नाम है परिवार। परिवार वो स्थान है इसमें कि आदमी अपनी सद्गुणों का सद्वृत्तियों का अभ्यास कर सकता है। अगर परिवार न हो तब अकेला रहे तब अकेला आदमी बिल्कुल बेकार है। अकेला आदमी जंगल में कहीं रहने लगे तो न बोलना सीख सकता है, न सीखना सीख सकता है, न चलना फिरना सीख सकता है, कुछ नहीं सीख सकता। उसके लिए सब बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जैसे दूसरे जानवर अकेले रहते हैं ऐसे ही गूंगे बहरे की तरीके से, बंदर की तरीके से आदमी रहने लगेगा। अगर आदमी के लिए चारों ओर काम करने के लिए समान प्रकार के लोग न हों तब परिवार उसी का नाम है, जिसमें कई तरह के कई स्तर के लोग रहते हैं और किस स्तर के लोग की विचारणा कैसी होती है, आवश्यकता कैसी होती है, भावना कैसी होती है, इसके साथ में तालमेल बिठा करके अपनी समझदारी को बढ़ाने का मौका केवल कुटुंब के बीच ही मिलता है। इसलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है और ये कहा गया है उसका विकास सिर्फ इस बात के ऊपर टिका हुआ है आदमी किन लोगों के साथ रहा, किस तरीके से रहा। ये रहने के लिए आदमी को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए भी आवश्यकता पड़ती है और शारीरिक जिंदगी को पूरा करने के लिए भी। आदमी ऐसे बंधनों से जकड़ा हुआ है कि अगर चाहे कि अकेला रहूँगा, अकेले रह करके जीवन यापन करना मुश्किल है। कमाने के लिए जाएगा तब घर के सामान का क्या होगा, चोरी कोई कर ले जाएगा तब, रखवाली के लिए तो कोई चाहिए नहीं। अगर बच्चे न पैदा करने हो तो बात अलग, पर बच्चा अगर पैदा हुए हैं तो उनके रखवाली के लिए कोई इसकी संरक्षक चाहिए ना, 24 घंटे का संरक्षक की आवश्यकता है, तो ये कौन आए, कहाँ से आए बताइए। ये सब उनकी धर्मपत्नी कहती हैं। इसमें एक धर्मपत्नी को सहायता के लिए बूढ़ी माँ होती है, पिताजी बूढ़े हो जाते हैं वो घर को देखभाल करते हैं, कई बच्चे आपस में सलाह मशवरा करते हैं, खेल कूद करते हैं, इस तरीके से एक सारा माहौल बन जाता है कुटुंब का, परिवार का। और इस परिवार के बीच में रह करके प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को विकास करने का मौका मिलता है। बच्चे अपने ढंग से विकास करते हैं, बच्चों को हंसने के लिए, खेलने के लिए, माँ की गोदी में बैठ करके कपड़े पहनने के बारे में, कपड़े धोने के बारे में, टट्टी पेशाब करने के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अगर अकेला बच्चा हो तब गाय के बच्चे के तरीके से और बंदर के बच्चे के तरीके से अनगढ़ रहेगा। बच्चों को विकास करने का अपना मौका मिलता है, औरों का भी विकास मिलता है। लड़कियां हैं जब माँ बन जाती हैं तो उनको बच्चों की देखभाल करना आता है। पहले स्कूल ही जाती थी, अपनी सहेलियों में हस्ती मजाक करती रहती थी, खाना खाया और खेलने लगी, उपन्यास पढ़ लिया, बात ख़त्म। ज्ञान की वृद्धि के लिए उनको भी तो मौका मिलता है। पति के साथ व्यवहार किस तरीके से किया जाए, सास क्या होती है, देवर किसे कहते हैं, बच्चे किसे कहते हैं, अमुक बात कैसी होती है, मेहमान के किसे कहते हैं, अतिथि घर में कैसे आते हैं, पैसे की देखभाल कैसे रखी जाती है, घर और सामान की व्यवस्था को किस तरीके से रखा जाना चाहिए, वगैरह वगैरह संसार ज्ञान उन महिलाओं को कुटुंब के बीच में ही रह करके मिलता है। कुटुंब से इनको बाहर रखी जाए तब अकेली रहें, तब केवल दफ्तर में जाएं और होटल में खाने लगें, तब शादी न करें, तब ठीक है अपना जीविका कमा सकती हैं, लेकिन उनको सांसारिक ज्ञान के संबंध में, अपना अनुभव विकसित करने के संबंध में कोई मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए कुटुंब महिलाओं से लेकर के बूढ़ों तक के लिए, बच्चों तक के लिए, हर एक को अपने अपने ढंग का व्यक्तित्व का विकास करने के लिए एक बहुत अच्छा सा एक कारखाना है, एक प्रयोगशाला है। ये इस प्रयोगशाला में हम में से, हम और आप में से हर एक को रहना चाहिए। अपना कुटुंब हो तब ठीक है, अपना सही, अपना नहीं है चलिए, अपना नहीं बसाया है या नहीं बसाने का मन है तो दूसरों का कुटुंब सही। कुटुंबों के बीच में तो रहना ही पड़ेगा। आप कुटुंब से अलग रह करके एकाकी रहने की बात अगर विचार करते हैं तो गलती करते हैं। थोड़े समय के लिए कोई आदमी अपना बौद्धिक या भावनात्मक विकास करने के लिए, चिंतन करने के लिए एक सामयिक समय निकाल ले, बात भिन्न है, भिन्न है। आदमी कोई उपासना करने के लिए एकाकी गुफा में रहने लगे, बात अलग है, ये कोई विशेष बात है, अपवाद है और विशेष उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, पर सामान्य बात नहीं है। सामान्य जीवन के विकास करने के लिए आदमी को परिवार में रहना बहुत सख्त आवश्यक। परिवार से बिलग मत होइए। शादी नहीं करना चाहते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं। आपके माता पिता हैं, बड़े हैं, भाई के बच्चे हैं, दूसरों के बच्चे हैं, एक कुटुंब में रहिए ताकि आपके जीवन यापन करने के लिए सारी व्यवस्थाएं बन सकना संभव हो सके। नहीं तो फिर आपको ही खाना पकाना पड़ेगा, आपको ही आप बाज़ार से आटा खरीद के लाना पड़ेगा, आपको ही साग भाजी बनानी पड़ेगी, आपको ही बर्तन साफ करने पड़ेंगे, आपको ही घर का हर काम करना पड़ेगा। और घर का हर काम करने में, जिसमें जीवन जिंदगी के लिए हर दिन की ज़रूरतें पड़ती हैं, आपका इतना सारा समय खर्च हो जाएगा, तो आपके लिए जाना मुश्किल हो जाएगा और फिर आप थके हुए आएंगे, थके हुए आकर के अपने हिस्से में ही सारी ज़िंदगी का काम करेंगे तो या तो बड़े सीमित हो जाएंगे, जैसे बंदर वगैरह होते हैं, पेट भरते हैं, अपना टट्टी का कोई इंतजाम नहीं है, मिल गया तो खा लिया, या तो आप ऐसी ज़िंदगी जिए, अथवा सभ्यता की ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो परिवार के अलावा और कोई गुजारा नहीं है। परिवार के की महत्ता को आप समझिए, परिवार की आवश्यकता को समझिए। परिवार की आवश्यकता को समझ करके सबसे पहली बात यह समझिए कि इसमें शारीरिक जीवन यापन करने की सुविधा ही नहीं है, केवल काम वासना से लेकर के हंसने खेलने और नित्यकर्म के लिए यथास्थान सुविधाएं मिलने तक की बात नहीं है। मुख्य बात इसमें यह है कि इससे व्यक्तित्व का विकास करने में, सद्गुणों की संपदा को विकसित करने में सबको मौका मिलता है, जिसमें आप भी शामिल हैं। खासतौर से घर के मालिक को सबसे ज़्यादा मौका मिलता है कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, जो दुकान पर नहीं कर सकता, जो खेती बाड़ी में रह के नहीं कर सकता, जो नौकरी में रह कर के नहीं कर सकता, वो सारे के सारे गुण विकसित करने का मौका उसको अपने छोटे कुटुंब में रह कर के ही मिलता है। इसलिए कुटुंब की महत्ता आप में से हर एक को समझनी चाहिए, हर एक को उसका प्रयोग इस तरीके से करनी चाहिए आदमी के व्यक्तित्व का विकास हो, जिसमें आप भी शामिल हैं और आपके घर के हर सदस्य शामिल हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप अपना मानते हैं। अपना मानते हैं तो उनके व्यक्तित्व के विकास में मदद कीजिए। धन बढ़ाने में, धन बढ़ाए कि न बढ़ाए, मैं इस पर आपसे बहस नहीं करता। धन की आवश्यकता है कि नहीं, मैं बहस नहीं करता। धन कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए, ये तय करना आपका और दूसरों का काम है, हमारा नहीं। हम तो सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि व्यक्तित्व अगर आपको विकसित करना है तो आपको एक कुटुंब के बीच में, परिवार के बीच में रहना चाहिए। आया वो आपका बनाया हुआ हो, आपके पिताजी का बनाया हुआ हो, भाइयों का बनाया हुआ हो, पड़ोसियों का बनाया हुआ हो, पर किसी न किसी के कुटुंब के का सदस्य होकर के रहना चाहिए। अलग रहने की बात, अकेला ज़िंदगी जीने की बात, इक्कड़ रहने की बात, समाज से विरत रहने की बात, परिवार से दूर रहने की बात आपको नहीं सोचनी चाहिए। और परिवार में रह करके भी एक कैदी की तरीके से आप रहें, दूसरे लोगों में दिलचस्पी न लें, ये उससे भी बुरी बात है। आप रोटी तो खा लें लेकिन अपने कुटुंबियों के बारे में ये न ख्याल करें, इनका विकास कैसे होना चाहिए और इनके बारे में क्या हमारे फर्ज और कर्तव्य हैं, बुरी बात है। और आप जब तक उनके लोगों के बीच में दिलचस्पी लेना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपका स्वयं का व्यक्तित्व का विकास भी संभव नहीं है। एकाकी रहिए, भली से गुफा में चले जाइए, जंगल में रहिए, जेल खाने में चले जाइए, काल कोठरे में बंद हो जाइए, फांसी घर में चले जाइए, जहाँ भी रहिए अथवा कुटुंब में आप इस तरीके से रहिए जिससे आपको खाना खा लिया और कपड़ा पहन लिया, चारपाई पे सो गए, सवेरे उठ करके बाहर चले गए, जिसमें घर में कौन रहते हैं कौन नहीं रहते हैं, किसको किस तरह की चीज़ की ज़रूरत है, किसको किस किस चीज़ की आवश्यकता है, किसकी भाव संवेदनाओं को ऊँचा उठाने में आपकी क्या जिम्मेदारी है। अगर आप इसको नहीं ख्याल करते तो आपका घर रहना रहना बराबर है। मैं चाहता हूँ आप कुटुंब भी होकर के जिए, परिवार होकर के जिए, वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता से ओतप्रोत रहे और आत्म सर्वभूतेषु का सिद्धांत लागू करने के लिए दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करने के साथ साथ आप ये भी करें, इस थ्योरी को प्रैक्टिस में लाएं। और प्रैक्टिस में लाने के लिए इससे बेहतरीन प्रयोगशाला शायद ही दुनिया में कोई हो, जैसे कि हमारे कुटुंब के रूप में हमको भगवान ने दी है। ये क्या है कुटुंब, इसमें से आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आप अपने आप को लोक व्यवहार के बारे में जानकार बना सकते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, बच्चों के साथ आपका व्यवहार कैसा हो, बड़ों के साथ आपका व्यवहार कैसा हो, बराबर वालों के साथ आपका व्यवहार कैसा हो, मिल बांट के खाने में कैसा आनंद आता है, इस पर आप समझें। और एक दूसरे के दुख और दर्द, सुख और सुविधाएँ बटा लेने से कितना ज़्यादा आदमी सुखी और समुन्नत रह सकता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करना सीखें। ये सारी बातें कुटुंब में ही संभव। एक और कुटुंब में क्या क्या सीखा जा सकता है, लोक व्यवहार जिसको शिष्टाचार कहते हैं, अनेक स्तर के लोगों के साथ में अनेक प्रकार के व्यवहार कैसे किए जा सकते हैं, इसको आप छोटी प्रयोगशाला में देख सकते हैं। कोई बच्चे गड़बड़ भी फैलाते हैं, कोई बात भी हो जाती है, कोई नाराज भी हो जाता है, नाराज हुए आदमी को समझाया कैसे जाना चाहिए और मनाया कैसे जाना चाहिए, गड़बड़ पैदा करने वाले आदमियों के साथ सस्यों के साथ में टेढ़िया कैसे करनी चाहिए, उनको धमकाना कैसे चाहिए, अपनी नाराजगी जाहिर कैसे करनी चाहिए, ये बातें आप कुटुंब में रहकर के सीख सकते हैं। बाहर वाले लोगों के साथ में सीखेंगे तो गड़बड़ी फैल जाएगी और झगड़े खड़े हो जाएंगे और आपको आदमी तलाश करने पड़ेंगे, फिर बार बार चक्कर कैसे काटेंगे उनके पास अथवा वो कैसे आपके पास आएंगे। इसका अच्छा तरीका, सहज तरीका यही है कि अपने कुटुंब में आप अपने आप के तई उपवास सीखें और सारे कुटुंब को वो बातें सिखाएं जो आदमी के मानवीय गुणों के साथ में संबद्ध हैं। आप बहुत से काम कर सकते हैं घर के भीतर दायरे में रह करके भी। समाज में तो सेवा करनी चाहिए, लेकिन समाज की सेवा में से आप ये न विचार करें कि कुटुंब में हमारी जो समय खर्च होता है इससे समाज की सेवा नहीं होती। कैसे सेवा नहीं होगी, आप नर रत्नों का उत्पादन घर की खदानों का कर सकते हैं। अगर आप अपने घर का संस्कारी वातावरण बना लें, सब लोगों को आरंभ से अंत तक शिष्टाचार और दूसरी मर्यादाओं को पालन करने के लिए शिक्षित करते रहें, तो आप विश्वास रखिए आपके घर के लोग स्वावलंबी बन सकते हैं, सुसंस्कारी बन सकते हैं। स्वावलंबी बनना और सुसंस्कारी बनना बहुत कुछ इस बात के ऊपर निर्भर रहता है घर का वातावरण कैसा है। ये स्कूलों में नहीं सिखाया जा सकता, इसको कोई आदमी कथा और उपदेशों के द्वारा किसी के गले नहीं उतार सकता। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि समूचे कुटुंब का एक खास तरह का वातावरण बनाया जाए, उस वातावरण जैसा बना गया है उसमें हर आदमी को ढाला जाए। वातावरण ढालता है आदमी को, आप यकीन रखिए वातावरण ढालता है। एक आदमी के उपदेश करने से कहाँ काम चलता है, कोई समर्थ आदमी ऐसे हुए भी होंगे जिनके उपदेश का किसी ने एक दस्तमा में कोई लाभ उठा लिया होगा, नारद जी जैसे आदमी पर हर आदमी कहाँ होते हैं। आदमी को ढालने के लिए वातावरण की जरूरत, ईंट को पकाने के लिए एक गर्म हवा की जरूरत है। अब गर्म हवा न हो तो आप कैसे ईंट पका लेंगे। मनुष्यों को पकाने के लिए घर का वातावरण चाहिए। आपने अगर जिस तरीके से अपनी दुकान को चलाने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए, खेती बाड़ी को बनाने के लिए, अपना इज्जत बढ़ाने के लिए, अपनी नेतागिरी बनाने के लिए बहुत से काम किए हैं, उसमें से एक काम अगर आप ये भी कर लें कि हम अपने घर का वातावरण ऐसे बनाएंगे जिसमें जो कोई भी रहे उस सबको गर्म होने का मौका मिले। अभी में जो भी चीज़ लगा दी जाती है, आया ईंट हो, आया खिलौना हो, अथवा बर्तन हो, अथवा कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ पक करके तैयार हो जाती है। ठीक इसी तरीके से आप अपने यहाँ घर में एक ऐसा वातावरण बना सकते हो जिसमें आदमी समझदारी के साथ ज़िंदगी जिए, ईमानदारी की ज़िंदगी जिए और ज़िम्मेदारी की ज़िंदगी जिए। ज़िम्मेदारी की ज़िंदगी एक, ईमानदारी की ज़िंदगी दो, समझदारी की जिंदगी तीन, ये ऐसी जिंदगियां हैं कि अगर किसी को जीने का मौका मिले, आप विश्वास बनिए ये आदमी बड़ा मजबूत, बड़ा समर्थ, बड़ा सही और सफल होकर के रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं अगर आपका ध्यान इस ओर जाए। जिन चीज़ों की ओर आपका ध्यान गया है वो आपने की भी है और कर भी सकते हैं। मसलन आपने इस बात का ध्यान रखा है कि आपके घर वाले अच्छे साफ सुथरे रहें और उनको पहनने के लिए कपड़े अच्छे रहें, फटे हुए कपड़ों में आप बेइज्जती समझते हैं, इसलिए आपने कोशिश की है कि अपने घर के सब लोगों के पास अच्छे खासे कपड़े हों, अच्छे तरीके से रहें, लिबास उनके ठीक हों, घर आपका अच्छा हो, छप्पर आपका अच्छा हो, बर्तन आपके अच्छे हों। आपने दूसरों की आँखों में अपनी इज्जत जमाने के लिए जमाने का महत्व समझा है। फलस्वरूप आपने सब कुछ घर के वातावरण में जहाँ तक आपका लिए संभव था ये किया है कि आपका घर देखने में प्रभावशाली हो और दूसरों पर ये छाप डाले कि ये सब संजीदा और बड़े आदमियों का घर है। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप अपने घर का वातावरण में समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी का मादा हर सदस्य के भीतर पैदा कर सकते हैं, ताकि ये खूबसूरती के लिहाज से भी, कपड़ों के लिहाज से भी, शिक्षा के लिहाज से भी, आजीविका के लिहाज से भी, बुद्धिमानी के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा वजनदार चीज़। आप इसके लिए क्या काम करेंगे? आप एक स्वव्यवस्था का शिक्षण अपने घर में ही रह करके कर सकते हैं। स्वव्यवस्था मैनेजमेंट का प्रत्येक भाग घर से ताल्लुक रखता है। एक बड़े राष्ट्र को आपके सुपुर्द किया जाए अथवा एक कारखाने को सुपुर्द किया जाए अथवा एक शहर का आपको मेयर बना दिया जाए तो तब आप क्या करेंगे? जिन गुणों के, जिन समझदारी की आवश्यकता है इसका अभ्यास करने के लिए आपको अपने छोटे कुटुंब में उन सारे के सारे गुणों को और व्यवस्थाओं को सीखना चाहिए एवं सिखाना चाहिए। आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री घर में है ना, जो आप कमाते हैं उस कमाई को बढ़ाना तो घर से बाहर होता है, लेकिन उसको खर्च कैसे किया जाए, किन मदों में होने वाले खर्च को रोका जाए, किन मदों में खर्च को बढ़ाया जाए, अर्थ संतुलन कैसे रखा जाए, जो आप कमाते हैं उसी हिसाब से बजट कैसे बनाया जाए, ये पूरे का पूरा गणित और अर्थशास्त्र आपको घर के कुटुंब में दायरे में रह करके सीखने को मिल सकता है। आप जो कमाते हैं उसको इस हिसाब से खर्च कीजिए, उस हिसाब में से कटौती कीजिए, जो चीज़ बढ़ानी है उसमें से बढ़ाइए, बेकार कामों में से जो पैसा खर्च हो जाता है उसकी रोकथाम कीजिए। इस तरीके से आप एक अच्छे अर्थशास्त्री बन सकते हैं, अपने घर की व्यवस्था बना करके आप अच्छे एक समाजशास्त्री बन सकते हैं। समाज में ढेरों की ढेरों अच्छाइयाँ भी हैं और ढेरों की ढेरों बुराइयाँ भी हैं। अच्छाइयों को किस तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए और बुराइयों के साथ में किस तरीके से निपटा जाना चाहिए, इसके लिए आपको पग पग पर मौके मिलते हैं। ये पूरा समाज है, समाज में कौन कौन सी गुणों को बढ़ाया जाए, ढेरों की ढेरों कुरीतियाँ समाज में हैं, आपको समाज में से कुरीतियाँ निकालनी हैं। आप समाज में कहाँ कहाँ जाएंगे ज़रा बताइए, किस किस के पास जाएंगे बताइए, कौन कौन आपके कहना मानेगा आप बताइए, टाइम तो फुर्सत तो मिलती नहीं है। आप अपने घर में वो सारे काम कर सकते हैं, मसलन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की बात अपने घर में से कीजिए ना। आपके घर में कोई कुरीति नहीं है, आपके ढेरों की ढेरों कुरीतियाँ हैं, नर और नारी एक समान वाली बात है ना, आप बार बार कहते हैं ना नर और नारी की समानता का दर्जा मिलना चाहिए, इसका प्रयोग आप अपने घर में नहीं कर सकते। आप चाहें तो कर सकते हैं कि आपकी घर की महिला भी ये अनुभव करें, वो भी उसी तरह के एक सम्मानित सदस्य हैं, दूसरे दर्जे की नागरिक नहीं है जैसे कि दूसरे समाज में माना जाता है। आप अपने घर की प्रयोगशाला में ये प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी कुरीतियाँ हैं जो निकम्मे आदमियों को भिक्षा देने वाली बात, ये आप सीख सकते हैं। सैनिटेशन सारे समाज में फैलाया जाना चाहिए, स्वच्छता का आंदोलन सारे देश में फैलाया जाना चाहिए। गंदगी लोगों के दिमागों में बढ़ती है, गंदगी लोगों के शरीरों में बढ़ती है, गंदगी लोगों के सामान के ऊपर छाई रहती है, गंदगी आदमी की नालियों और टट्टी पखानों में भरी रहती है। ये गंदगी जो सारे समाज में फैली हुई है, आप सारे समाज को तो शायद ठीक कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप अपने घर में उस प्रयोग को करना शुरू करें तो जिस तरीके से छूत फैलती है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे आदमी पर चली जाती है, इस तरीके से आप एक अच्छी खासी छूत फैलाने में समर्थ बन सकते हैं। चलिए छूत न भी सही, समाज सेवा न भी सही, तो आप लोग ये अपने मनों के अंदर सुसंस्कार जमा सकते हैं कि सफाई कैसे रखी जा सकती है, व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है, कपड़ों को कहाँ रखा जा सकता है, धूप में सुखा करके गंदगी को दूर कैसे किया जा सकता है, नालियों में किस तरीके से सफाई रख करके गंदगी और सड़न और बदबू और बीमारियों से बचा जा सकता है। बहुत सी बातें हैं जो आप सफाई जैसे महकमे को ठीक कर सकते हैं। खान पान के बारे में समाज में बहुत सी कुरीतियाँ फैली हुई, कुपोषण के बारे में बहुत सारी बातें शिकायतें सुनने में आती हैं, लोग कुपोषण से कितने बीमार हो गए हैं, कितने कमज़ोर हो गए हैं, कितने हैरान हो रहे हैं। आप चाहें तो कुपोषण के बारे में अपने घर का निर्धारण आप स्वयं कर सकते हैं। गरीब हैं तो अभी आप ऐसा कर सकते हैं, साग भाजियाँ बना करके, साग भाजियाँ उगा करके अपने घर में नई पैदावार या गृह उद्योग करने की मनोवृत्ति पैदा कर सकते हैं और कुपोषण से बच सकने के लिए एक वातावरण बना सकते हैं। आप सारे संस्कारों को अपने घर में जैसी अच्छी तरीके से बना पाएंगे उतना शायद और कहीं नहीं। मिलजुलने की वृत्ति, सहकारिता की वृत्ति का आवर्धन आज के ज़माने में बहुत जरूरी है। हर आदमी को मिलजुल के काम करना चाहिए। आपके घर में मिलजुल के काम करने की आदत नहीं है तो आप आदत को शुरू करिए। स्त्रियाँ बेचारी अलग से काम करती रहती हैं, मर्दों का कोई इसमें सहयोग नहीं है। मर्द अपना काम अलग करते रहते हैं, स्त्रियों का कोई सहयोग नहीं है। बच्चे अपने अलग खेलते रहते हैं, उनके माँ बाप के काम में हाथ बटाने का कोई सहयोग नहीं है। बड़ा भाई घूमता तो रहता है, ताश तो खेलता रहता है, रेडियो तो सुनता रहता है, पर इस बात का सहकार नहीं है कि हमारे छोटे भाई बहन जिसके लिए ट्यूशन लगाया नहीं जा सकता, फालतू समय में अपने छोटे भाई और बहनों को पढ़ाना शुरू करें। बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े घर के बाबा दादी हैं, उनको छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों के सहायता की ज़रूरत पड़ती है, उनको उठने बैठने में सहायता की ज़रूरत पड़ती है, उनको पानी से लेकर के नाश्ते और चाय तक के बारे में ज़रूरत पड़ती है। कपड़े अपने आप साफ़ नहीं कर पाते तब उनके कपड़े धोकर के दूसरे धूप में बिठाने तक के ढेरों काम ऐसे हैं जिसमें दूसरों की मदद की ज़रूरत है। बड़ों को अपने बूढ़ों की मदद करनी चाहिए, बच्चों को अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए। इस तरीके से घर में वातावरण और सहकारिता का बनाया जाए तो आप विश्वास रखिए जो आदमी आपके घर के मेंबर हैं जब आप बड़े होंगे तो एक सहकारी व्यक्ति साबित होंगे। अपना कुटुंब में जब कभी भी रहेंगे सहकारिता का आनंद उठाएंगे और समाज में जहाँ भी उनका योगदान होगा सहकारिता का वातावरण बना सकने में समर्थ बन रहे होंगे। ऐसे ढेरों की ढेरों चीज़ें हैं जो आप कुटुंब में रह करके अपने दायरे में छोटी सी बातें पैदा करते हुए बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दायरे का विस्तार जैसा अच्छी तरह कुटुंब में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। आप जो कमाते हैं हिल मिल के खाते हैं ना, मिलजुल के खाते हैं ना, अगर कुटुंब न हो तब मुश्किल है। ये हिल मिल के खाने का आध्यात्मिक संवाद आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। चुरा करके खाएंगे, जो आदमी अपनी ज़्यादा कमाता है वो आदमी ज़्यादा खाएगा नहीं, ये साम्यवादी सिद्धांतों के विरुद्ध। चाहे कुटुंब में रहते हैं समर्थ हैं तो क्या, समर्थ हैं तो क्या, संयुक्तता के मतलब ये होता है उस पर सभी हरेक का हिस्सा, हरेक का है हक, आप हरेक का हक स्वीकार कीजिए। आप ज़्यादा कमाते हैं तो आप खर्च मत कीजिए, आप ज़्यादा पैसे अपने हिस्से में मत लीजिए। आप पान खाने में खर्च करना चाहते हैं, बच्चों को स्कूल के लिए किताबों को ट्यूशनों की कमी पड़ती है, क्यों करते हैं आप ऐसा? आप सिगरेट पीना चाहते हैं, कोको कोला पीना चाहते हैं, इसीलिए पीना चाहते हैं ना कि आप कमा करके लाते हैं और आपकी जेब में पैसे और आपको खर्च करने से कोई रोक नहीं सकता। गलत बात, रोक नहीं सकता आप दबाव की वजह से। तो आपको ईमानदारी और सराफत सिखाई जाए और आप अपनी मर्जी से न करें, ऐसा क्यों? इसके लिए आप ये समझिए कि आपका कुटुंब इस तरीके से बहुत ही अच्छा एक वातावरण है जो आपको समझदारी स्वयं को सिखाता है, जिम्मेदारी आपको सिखाता है और आपको ईमानदारी आपको सिखाता है। आप न केवल स्वयं सीखें बल्कि सारे घर को सिखाएं। अगर आप ऐसा करने में समर्थ हो सके तो आपका कुटुंब न केवल आपके लिए बल्कि आपके घर में रहने वाले सभी सदस्यों के लिए सुख और शांति का आधार बनेगा। न केवल घर में रहने वालों के लिए बल्कि उसकी समाज में हवा फैलेगी तो चंदन का दरख्त जिस तरीके से अपनी खुशबू से चारों ओर वातावरण अच्छा बना देता है, ऐसे ही आप सारे समाज को सुगंधित और सुविकसित और समुन्नत बनाने में समर्थ हो सकेंगे। ऐसा है अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह जिसमें से आप में से हर एक को करना चाहिए। शांति।